का आदेश हुआ है। सर्वप्रथम उनका आदेश का पालन करती हुई मैं श्री राधे श्याम के चरणों में उनकी स्तुति कर रही हूँ।
बजावे आ थे गुरु जी। ओम भक्ति जिन्होंने अपने चरणों में आश्रय देकर सत सत अपराधों की मार्जना करते इस प्रकार श्रीमद् भागवत अध्ययन कराते इस प्रकार अपने कष्टों को स्वीकार करते ये अक्षरों के साथ अध्ययन कराकर ये त्रुटि संशोधन करते इस जड़ बुद्धि बारे को अनुग्रहित किया चरणों में आश्रय दिया ऐसे श्री गुरु महाराज महाराष्ट्र के चरणों असंख्य कोटि जन्म तथा आप सभी वैष्णव जन गुरु वर्ग सज्जन जन ब्रजवासी है माता है बहन है आप लोगों ने कृपा पूर्वक यहाँ उपस्थित होकर कुछ जैसे जड़ को यहाँ पर बैठा कर आप लोगों ने कथा सुनने का जो आग्रह प्रकाश किया आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम आप सभी लोग ऐसा लगता है बहुत लोग मुझे प्रणाम करते हैं ऐसा लगता है आप सभी लोग ब्रजवासी अनुयायी हैं हमें पागल जान करके ही आशीर्वाद दें करुणा ऐसे इस लीला कथा रस में चित्त अभिविष्ट हो जाए ब्रज धूल ही कुल भी जाए इसी भावना में चित्त समा जाए इस प्रकार आप सभी लोग सभी वैष्णवों के चरणों सही जय गुरु भाता सबके चरणों मेरा प्रणाम
कृष्णदाई पायन व्यास ने सत्यम परम धीमहि से कथा आरंभ की। आदिरस के जो प्रवर्तक विश्व ब्रह्मांड का जो सृजन करने वाले प्रलय और स्थिति करने वाले तथा आद्य श्रृंगार रस का जो प्रवर्तक कृष्ण अथवा राधा और कृष्ण अथवा केवल श्रीमती राधिका हैं उन परब्रह्म को सत्यम परम धीमहि उस कृष्ण को सत्यम परम धीमहि उस जिगल किशोर किशोरी को सत्यम परम धीमहि और अंत में श्रीमती राधिका को ही सत्यम परम धीमहि रूप में प्रणाम किया। कथा समाप्त करके समाप्त क्या करते हैं वही समाप्ति में भी वही कहते हैं सत्यम परम धीमहि कहते हैं श्रीमद् भागवतम कस्मै केन अभी जय श्लोक किसने उच्चारण किया तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि बस वहीं पर फिर ले आए वही जगत इत्यादि को सृष्टि करने वाले पालन करने वाले और ध्वंस करने वाले अथवा मधुर रस का जिनसे प्राकट्य होता है अन्वय व्यतिरेक में अर्थात संयोग और मिलन में जो रस की व्युत्पत्ति होती है और अंत में उसी रस में इनके अतिरिक्त कोई जानने वाले नहीं हैं ऐसे श्री कृष्ण अथवा ऐसे राधा और कृष्ण जुगल अथवा श्रीमती राधिका केवल वो रसस्वरूपिणी है, कृष्ण से उनको माइनस कर देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय राधिका का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसी प्रेम को लग करके चलना चाहिए। परीक्षित ने इस प्रेम को सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किए। जिस समय की वो जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी चले गए, उसी समय तक्षक एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ रहा है। बीच में उसे कश्यप नामक एक ब्राह्मण से भेंट हुई। कहाँ जा रहा है? जा रहे हैं परीक्षित महाराज की सभा में। क्यों जा रहा है? जा रहा है उस समय तक्षक काटेगा और मैं उनको उसी समय में चुटकी बजाते ही जीवित कर दूंगा, तो तुम नहीं कर सकेगा। देखो मैं वही तक्षक हूँ, बस तक्षक का रूप धारण कर लिया। कहा जो इस पेड़ को, बरगद के पेड़ को जो इतना लंबा चौड़ा विशाल है, मैं काटता हूँ, तुम इसको बचा दो तो मैं समझ जाऊँ। कहा अच्छा ठीक है तुम काटो। बस उसने भीषण फंड प्रकट करके और उसको जड़ में काटा। वो जड़ से मूल तक और अंत तक सब कुछ एक सेकंड के अंदर में जल करके स्वाहा हो गया, भस्म हो गया। नहीं जी ठीक है, और वो एकदम गर्व से उनके तरफ में देखना, अच्छा तो तुम इसको जीवित करो। बस उन्होंने अपनी जड़ी बूटी निकाली, उसे घोटी और भगवान नाम से मंत्र से पूत कर उसके अपने हाथ में लिया और राख के ऊपर में ही उन्होंने दे मारा। और मारते ही देखा जैसे उसमें उससे अंकुरित हो गए पत्ते और धीरे धीरे एक सेकंड कदर में विशाल फील हो गया। कहा जी महाराज आप तो गजब कर दिया, आप तो जरूर परीक्षित को जगह बचा गए। ये देखिए आपके सामने हीरे जवाहरात मोहरों की मैं ढेरी कर देता हूँ, या तो परीक्षित महाराज को बचाइए नहीं लीजिए। उस ब्राह्मण के मुख से पानी निकलने लग गया। बस रुपये पैसे ले लिए और लौट गया। उस समय में धर्म ने इसको ऐसा कहा, आज से तुम्हारा मंत्र अब कोई काम नहीं करेगा, तुमने पैसे के बल से इसको तुमसे छोड़ दिया अपनी चिकित्सा, और पैसा ही तुम्हारा प्रधान हो गया। तो जिन पेशा में भागवत में यदि अर्थ प्रधान हो गया, औषधि में यदि अर्थ प्रधान हो गया, आजकल के चिकित्सकों की बातें देखते हैं ना, कहते हैं कि अभी 1,00,000 रुपया लाओ नहीं तो हमारे यहाँ से चले जाओ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिकित्सकों को हमने सुना है, निष्ठुर निर्दय होते हैं। मंत्र भी तो आज इसीलिए समाप्त हो गए, उसी समय से मंत्र विद्या करीब करीब वो आया तक्षक। उसके पहले ही उन्होंने चित्त को भगवान में लगा दिया, उन्होंने मन को लगाया, ब्रह्मांड में ले गए। अब ब्रह्मांड में ले जा करके राधा और कृष्ण के चरणों में, जुगल चरणों में लगा दिया और उसमें से निकाल करके और राधा कृष्ण को गोलोक वृंदावन में लेकर के चले गए। शरीर निरस और बिना आत्मा का रह गया, सूखा भूसा जैसा। अब वो आया तक्षक ने इसी को काटा। वो भूसा तो ऐसे ही जला हुआ था, उसको कुछ नहीं कर सका, वो जल करके खत्म हो गया। उसके पहले परीक्षित महाराज कहाँ गोलोक वृंदावन धाम में, इस भाव से, जिस भाव को देने के लिए सुखदेव गोस्वामी आए थे। क्या देने के लिए? गोपी प्रेम। उस गोपी प्रेम में वो पहले से भगवान के परिकर थे, थोड़ा और विशुद्ध होकर के भगवान के प्रेम में मत होकर के वहां पर परिकर होकर के चले गए। ऐसा मत समझना कि सुखदेव परीक्षित महाराज को सांप ने डस दिया, उनको इस जगत का कोई भी चीज स्पर्श नहीं कर सकता। इस तरह से परीक्षित महाराज वहां पर चले गए। उसके थोड़े से पहले मैया वहां आई। मैया ने, बेटा मैं स्त्री बुद्धि की हूं, मैं इतने तत्व विज्ञान इत्यादि मैं समझ नहीं सकूं, मेरे लिए थोड़े रूप में इस भागवत का भी सार कहो। भागवत तो वैसे ही निगम कल्पतरुर्गलित अंग फलम सुखम खाद अमृत द्रव सौजन्यतम है ही है, किंतु इसमें भी सार जो चीज है वो उसको बतलाओ। बस मैया को उन्होंने बतलाया कि देखो समस्त आराधनाओं से, उपाख्यानों के द्वारा बतलाया, दो उपाख्यान जिसमें गोप कुमार का उपाख्यान और नारद ऋषि का उपाख्यान बतलाया, और अंत में उसके द्वारा बतलाया मैया अब मैं तुमसे क्या लज्जा करूं और तुम भी हमसे क्या लज्जा करें। अब लज्जा करने की जरूरत नहीं है। इस कृष्ण को तुम अपना परम प्रियतम गोपियों जैसा समझो, और गोपियों ने जिस प्रकार से उनकी आराधना की उसी प्रकार से आराधना करो। ये श्रीमद्भागवत का सार तुमको मैंने बतलाया गुप्त, बस वो कृतार्थ हो गई और वो भी शरीर को छोड़ करके गोलोक वृंदावन में पहुंच गई। ऐसे यह श्रीमद्भागवत अंत में सुत गोस्वामी जी कहते हैं, अपने गुरु जी को प्रणाम करके तब अंत में कहते हैं, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। उस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन करने से संसार का सब कुछ दूर हो जाता है और राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे श्रीमद्भागवत को हम लोग भी प्रणाम करके आज समापन कर रहे हैं इस समय के लिए। आप लोग सब लोग अभी असमाप्त हुआ ऐसा मत समझेंगे, आज से आरंभ करेंगे। और भागवत का जो सार हम लोगों ने बतलाया, गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, उसके प्रति आप लोगों का लोभ हो, आपका जीवन सार्थक हो। इस कथा में 10 दिन तक यदि किसी को किसी प्रकार से मनक्षोभ हुआ हो वो हम लोगों को क्षमा करेंगे, हमारे त्रुटियों को दूर करेंगे, और इस कथा का जो सार है उसको श्रवण करके ग्रहण करके आप लोग जाएं। इस कथा में जिसने योगदान किया, इसमें कुछ भी एक माला फूल तुलसी चंदन किसी प्रकार से लाए और इसमें कथा को श्रवण किया, जो कथा बोला सब प्रकार से किसी प्रकार से अनुमोदन किया, विशेष करके आप लोगों की जूतों की जो रखवाली नीचे की उनका भी, सब लोगों का, जिन लोगों ने कीर्तन किए इतने सुंदर सुंदर, इस कथा को सब समय रोचक बनाया, महिलाओं में भी मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो बोलो, हम लोगों पर सब ब्रजवासी लोग आप लोग कृपा करेंगे जो हम लोग उसी तरह से श्रीमद्भागवत का सार जो गोपी उपक्रम है उसके प्रति हम लोगों का थोड़ा सा लोग, यही मैं प्रार्थना करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सुरेश जी, श्रीमान सुरेश जी एक कीर्तन करेंगे और इसके बाद में हम लोग भागवत की आरती उतार करके समाप्त करेंगे। कल आप लोग जैसा कि बतलाया गया है आप लोग आ करके और कथा में पूर्णाहुति प्रदान करें। बोलो जय श्री राधे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। अरे नन्नुमल को ये दिया है, नन्नुमल को पहना हमने।
और राम प्रकाश जी का एकादश दिवस व्यापी भागवत आज संपन्न होने जा रहा है। भागवत की समाप्ति पर कल सुंदर पुष्प वृष्टि हुई, शाम को आरंभ में भी हुआ और अंत में भी हुआ। सबसे बड़ी बात, बिना कोई सांसारिक फल का कोई आजकल भागवत में नहीं सुनता और पढ़ता। इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये आदर्श है, बिना किसी सांसारिक फल के भगवत प्रेम के लिए इन्होंने, इसलिए आप लोगों में भी ऐसा ही भाव होगा। जैसे मूल श्रोता का होता है, उसका सब संक्रमण करता है दूसरों में, तो इनका ही शुद्ध भाव आप लोगों में भी आएगा। कोई सांसारिक फल वासना मत रखें, जैसे महाराज परीक्षित की भी। विशेष करके जो सप्ताह की कथा होती है ना, 7 दिन की, उसमें भी एक रहस्य है। इसकी कथा सुनने से 7 दिन सप्ताह में ये जो ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं, ब्रह्मांड के 7 आवरण, ये इसको आदमी सहज ही पार हो जाता है। इधर सुनो, तुम घर में चित्र लगा। 7 आवरण माने क्या है? क्षिति जल पावक गगन समित, ये 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महत्त्व और प्रकृति, ये 7 आवरण। प्रकृति का आवरण इतना मनोहर है, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मालोक में भी वो सुख नहीं। आदमी उसमें बरबस आकृष्ट हो जाता है, उसको भेद नहीं पाता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो क्रम मुक्ति के दृष्टि से यह 7 आवरणों को भी पार कर जाता है। किंतु हम लोगों का यह श्रवण और कीर्तन ऐसा नहीं, 7 आवरणों की भी बात नहीं है। ये क्या है, सद्य ही इन समस्त आवरणों को एक साथ पार करता हुआ ब्रह्मलोक को तो पार करता है, विद्या को पार कर जाता है, इसके बाद में शिवलोक को, सिद्धलोक को, वैकुंठ लोक को, रामलोक को, गोलोक को, द्वारका को, मथुरा को भी पार कर ब्रज में पहुंचा देता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है, बतलाया है कि जैसे सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद् रसामृतृप्तस्य नान्यत्र साध्य रतिः क्वचित्। यदि भागवत का रस किसी व्यक्ति को मिल गया एक बूंद भी, वो किसी शास्त्र में उसकी रुचि नहीं लगेगी। जो भागवत नहीं पाठ करा है, उसका रसवासादन नहीं मिला, तो वो गीता पढ़ते हैं, गर्ग संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे, मरने पर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना, ये सब पढ़ेंगे। और जिसको एक भागवत के एक श्लोक में भी रुचि हो गई है, रस मिल गया है, वो किसी भी शास्त्र को उठाएगा नहीं। निम्न गानं यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, भगवती गंगा कृष्ण की प्रिया है, और देवों में अच्युत माने कृष्ण सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वैष्णवानां यथा शंभु, जिस प्रकार से वो श्रेष्ठ है। पुराणाम इदम तथा, ये श्रीमद्भागवत पुराण भी समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में, वेद वेदांत उपनिषद सब में यह श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम, जब वैष्णवानां, ये वैष्णवों का प्रिय है, पढ़ते तो और लोग हैं, अद्वैतवादी, मायावादी, रामानुज के भी संप्रदाय के, मध्व संप्रदाय के और सभी लोग ये करते हैं, किंतु विशेष करके ये वैष्णव का प्रिय है। वैष्णव का चिन्ह क्या है? ये ऐसे उद्र पुण्य धारण करना, गले में तुलसी, हाथों में हरे कृष्ण की माला, तुलसी की सेवा करेंगे, भागवत की को श्रवण और पठन ही करते, ये वैष्णव लोग हैं। और उसमें भी एकांतिक वैष्णव हैं, कृष्ण के प्रति जरूर अनुराग, उसमें भी किशोर किशोरी जी के प्रति अनुरक्त हैं, उनको यह अधिक प्यारा है। उसमें भी किशोर किशोरी की भी पूजा करने वाले, आराधना करने वाले वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के लोग भी हैं, राधा वल्लभी भी हैं, और लोग भी, टट्टी स्थान भी है, सभी लोग हैं, किंतु गौड़ीय वैष्णव विशेष हैं, महाप्रभु की धारा वाला। क्यों? वो कृष्ण से भी राधा की तरफ में झुके हुए रहते हैं, राधा जी के कृपा के बल पर कृष्ण को भी कुछ नहीं गिनते, इसलिए ये कृष्ण से भी अधिक राधा के पक्ष वाले ये लोग हैं। भागवत उनका सबसे अधिक प्रिय है, उसी को बतला रहे हैं। भागवत महात्म्य में व्यास जी स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत की का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। स्कंद पुराण पुराणों में सबसे बड़ा है, उसमें अधिक संख्याएं हैं श्लोकों में। व्यास जी उसमें प्रणाम करते हुए श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्ति रसाप्तये अनिशम। हम कृष्ण की रसमयी भक्ति को पाने के लिए नित्य निरंतर सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधा कृष्ण का हम पुनः पुनः वंदन करते हैं रसमयी भक्ति के लिए। व्यास जी कहते हैं जो विश्व की स्थिति, सृष्टि और संहार के मूल हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करके उन्होंने महात्मा कहना आरंभ किया। एक समय ऋषियों ने शौनक आदि ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा सुना, हमने पहले बतलाया था ना, पहले दिन जो पहले हुई, अब तो बैठ जाओ बेटा, पहली कथा कब हुई? कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर। कौन कथा सुनाया? परीक्षित महाराज जी को, सुखदेव गोस्वामी। अब तो आप लोग चुपचाप बैठ जाइए। और कथा ये कौन कहा? सुख जी और सौनक, सौनक आदि ऋषियों को सुख गोस्वामी ने श्रवण कर। और तीसरी हुई, नहीं दूसरी, धुंधकारी वाली, धुंधकारी वाली मिस गाइड करता है, धुंधकारी को सुनाया गोकर्ण जी। और ठीक उसके 30 वर्ष और बाद में, 260 वर्ष बाद में सनत सनंदन सनत कुमार जी ने भक्ति के उद्देश्य से नारद जी को ये सब कथाएं सुनाई थी, जिसमें भक्ति देवी पूर्ण जमन संपन्न हो गई, आभूषणों से लद गई और उनके लड़के ज्ञान विराग भी पूर्ण स्वस्थ। इसके बाद में फिर बहुत सी कथाएं हुई जिसमें ये सुख सौनत की कथा थी, ये भी है। और उसके बाद तो कितनी बार इसकी बैठक बैठी हो, तब से ये आरंभ, तब से सप्ताह आरंभ। सुख गोस्वामी नैमिषारण्य में पूछ रहे हैं सुख गोस्वामी को सौनक आदि ऋषि, जबकि युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज जी को राज्याभिषेक में बैठा दिया और हिमालय में चले गए, और उनके भाई भीम अर्जुन, भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी जी भी चली गई उत्तराखंड में, और वो लोग एकदम यहां से छोड़ करके बैकुंठ लोक में भी चले गए, द्वारका में चले गए। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कौन परीक्षित महाराज जी और कृष्ण की गद्दी पर बैठा दिया था उनके प्रपौत्र को बज्रनाभ, इन लोगों ने किया। तो उसी को बतला रहे हैं सुध गोस्वामी जी, बड़े प्रसन्न होकर के बतला रहे हैं। यह भी कथा, ये कथा बतलाया ना जैसे उसमें है स्कंद पुराण में, तो वो कह रहे हैं कि उस समय में एक बात परीक्षित महाराज जी इस मथुरापुरी में आए, उस समय बज्रनाभ जी को यहाँ का राजा बना दिया था परीक्षित महाराज जी अर्जुन के कहने से, कृष्ण ने कहा अर्जुन को और अर्जुन ने परीक्षित महाराज जी को, और परीक्षित महाराज जी बज्रनाभ जी छोटे थे इनको मथुरा का राजा बना दिया। कृष्ण की पत्नियां इत्यादि भी इन्हीं के पास में रोहिणी इत्यादि रही, वो जो अर्जुन जिनको ला रहे थे और गोपों ने लूट लिया वो तो एक मैस्मेरिज्म था, मैस्मेरिज्म माने क्या, वो जादू था। कृष्ण की पत्नियों को भला गोप लोग लूट सकते हैं, कृष्ण लूट सकते हैं, इसलिए कोई कोई कहते हैं कि वो कृष्ण ही गोप के रूप में आए और अपनी पत्नियों को लेकर के चले आए ब्रज में और ब्रज से गोलोक वृंदावन। किंतु इसमें उल्लेख से मिलता है रोहिणी इत्यादि उनकी जो और माताएं थीं वो सब इनके साथ में थी बज्रनाभ जी के साथ। उसी समय में परीक्षित महाराज जी हस्तिनापुर से यहाँ पर उपस्थित हुए मथुरा में, उनको देख करके इनको बड़ा आनंद हुआ बज्रनाभ जी को, मानो इनके पिताजी या बाबा आ गए। बस अपनी माताओं को लेकर के और अपने मंत्रियों को लेकर के शहर वहाँ से बाहर नगर से बाहर आए और उनका बड़ा आवभगत किया, कहा जी आज हमको उतना ही आनंद है कि हमारे पिताजी या हमारे पिताजी के पिताजी रह करके हमारे पास में आते, आज मैं समझ रहा हूँ कि हमारे ऊपर में छत्र छाया आ पहुंची है, मैं निश्चिंत हूँ। उन्होंने कहा जी कुशल से है, कुशल से हूँ, माताएं ठीक हैं, हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, किंतु बिना प्रजा का राज कर रहा हूँ, कोई प्रजा नहीं, मथुरा तो सुनी हो गई थी ना, वो लोग सब चले गए। परीक्षित महाराज ने कहा जी देखो तुम सब प्रकार से सुखी और शांति रहो, किसी बात की चिंता मत करना, तुम जब जब कोई विपत्ति आए जब जब कुछ आए तो मुझे बस सूचना कर देना, बस इतना ही करना। कृष्ण तो अंतर्जामी थे, जान लेते थे, मैं अंतर्जामी तो नहीं, किंतु केवल मुझे सूचना कर देना, बाकी मैं सब तू देख लूंगा, तुम चुपचाप आराम करना। ऐसा कहने वाला बतलाओ तो कहने से कितना हृदय में आश्वासन होता, कोई विपत्ति कोई भी आए और यदि कोई ले ले अपने सिर पर और हम लोग आराम से भजन करें तो इसे बढ़कर के क्या हो सकता है, कि हम तो छोड़ना नहीं चाहते। परीक्षित महाराज के कहने से वो गदगद भये, आंखों में आंसू आ गए और बोले जी मैं ठीक समझता हूं कि आप मेरे माता और पितामह या पिता के समान, तो एक बात कृपा करके करें, हमारी तो कोई प्रजा नहीं और मैं राज्य करता हूं, कैसा राजा है, अपने राजगद्दी पर तो मेरा राज्य तिलक कर दिया। बस साथ ही साथ उन्होंने हजारों बनियों को यहां पर ले आए दिल्ली से, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को, वही सेठ साहूकारों के आज के जो बनिए लोग हैं यहाँ के, उन्हीं के पुत्र प्रपौत्र के रूप में वंशधर हैं। ब्राह्मणों को भी बुला लिया और जितने भी हो सकते हैं तांबुली तांबुल बेचने वाला और सब जो कुछ हैं सबको बुला करके यहाँ पर सुंदर सुंदर रूप में मथुरा की चार
वो चार ओर में यह रास्ता है ना, ये होली गेट से भरतपुर और वहां से वहां, वहां से वहां, ये उन्हीं का ये सब ऐसा बनाया हुआ था। पर सुंदर नगरी में इसे सजा दिया और सजा करके उनसे बोले, अभी उनके नंद बाबा के जो पुरोहित है सांडिल ऋषि इत्यादि को बुलाए। बस सांडिल ऋषि को बुलाए, उन्होंने कहा हमारे ऊपर में और इसके ऊपर में कृपा करें, ब्रज अब शून्य हो गया है, केवल जंगल ही जंगल हैं, कृष्ण ने कौन सी लीला कहां पर की किसी को दूसरे को मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं और बद्रीनाथ को भी मालूम नहीं, आप तो सब जानते उस समय के आप हैं, इसलिए कृष्ण ने कहां पर गोवर्धन उठाया, कहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड है, कहां पर नंदगांव बरसाना जावट प्रेम सरोवर साकेत इत्यादि स्थान है, कहां चरण पहाड़ी है, कहां काम्य वन है, कहां पर वृंदावन है, यह सब लुप्त हो गया है, इसलिए आप कृपा करके इन सब स्थानों का निर्दर्शन कीजिए और मुझसे जो आज्ञा करेंगे वह करूंगा। तो उन्होंने कहा पहले यहां पर गोविंद देव की स्थापना हो वृंदावन में, ये गोविंद की स्थापना उन्होंने कराई, परीक्षित महाराज जी ने सांडिल ऋषि से कराई, गोविंद मदन मोहन और गोपीनाथ। तो वो जब पहले बने ना गोविंद जी ने मदन मोहन, तो उनमें थोड़ा सा उनको कुछ त्रुटि मालूम, तो फिर मदन मोहन को गोविंद जी का बना और उसमें भी थोड़ा सा कमी रह गई, माने खूब सुंदर चरण कमल हुए ये मदन मोहन जी का ना, और गोविंद जी का क्या है मस्तक्षल, ये खूब सुंदर हुआ किंतु दोनों में मुखमंडल खूब सुंदर नहीं हुआ, तो अंत में गोपीनाथ जी को किया, गोपीनाथ जी का मुखमंडल भी बड़ा सुंदर हुआ, अब वो तीनों में तीनों को लगा करके सबके पूरे हो गए, इसलिए ये तीन हुए एक ही विग्रह, तीन गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन की प्रतिष्ठा हुई। गोपीश्वर महादेव की स्थापना हुई राशस्थली के पास में, राशस्थली में बंशी बटू समय था, वहां पर शंकर एक कोने में, सुखदेव जी एक कोने में, भागवती ऋषि एक कोने में और एक कोने में व्यास देव। अब उसको कुछ कुछ बदल दिए हैं लोगों, किसी में हनुमान जी को बैठा दिया और किसी में किसको बैठा दिया, तो इस तरह से, और गोवर्धन में बैठाया हरिदेव जी को, काम्यवन में कामेश्वर महादेव को, साकेत साकेत में संकेती देवी, जहां जहां पर ये सब नहीं हुए वहां पर बड़े बड़े कुंड और सरोवर बनाए उन्होंने, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, ये सब चीजें यहाँ, पावन सरोवर नंदगांव में, बरसाना में विश्वभानु कुंड, विश्वभानु खोर, और संकेत दिया वहां पर बीच में सकरी खोर, चित्रा सखी जी की चिकसौली इत्यादि का, और कमई करेला इत्यादि जितने भी स्थान हैं, ऊंचा गांव, ललिता जी का गांव, राधा जी की ससुराल जावट, इस तरह से ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जहां पर कृष्ण की लीलाएं नहीं हो और उनकी परिक्रमा किया, जिससे कि उसी समय से परिक्रमाएं आरंभ कर दी और इन स्थानों पर छोटे छोटे गांव बसा दिए, ग्वाले के गांव, ब्राह्मणों के गांव, गुजरों के, गुजरी गुजरी मैंने क्या, गुजर की जो रमणियां हैं उनको गुजरी कहते हैं, इस तरह से ब्रज में सब पुनर्स्थापना कर दी, परिक्रमा आरंभ कर दी, ये पांच दिन की परिक्रमा
पांच कोष की, ये सात कोष की, ये 14 कोष की, और एक गरुड़ गोविंद वृंदावन, और ये तीनों की मिला करके 3 परिक्रमा की भी करती, और 84 कोष ब्रजन मंडल की स्वरूप परिक्रमा
सब।
इस तरह से सभी चीज का प्रचलन उस समय से हुआ, अब ब्रज को पुनः से प्रकाश कर दिया। इस तरह से ब्रज को प्रकाश करने पर एक दिन जमुना जी के पास में जितनी कृष्ण की जो अभी स्त्रियां बची थी जमुना जी के पास में यहां पर आई वृंदावन में। जब आई तो उनसे कहा, जमुना जी आप तो सब समय प्रसन्न रहती हैं, हम तो बड़ी दुखी रहती हैं कृष्ण के विरह में, आप क्यों इतनी प्रसन्न हैं? उन्होंने कहा, इसमें बतलाया, मैं राधा जी की कृपा से प्रसन्न हूं, राधा जी की हमारे ऊपर में बड़ी कृपा है, कृष्ण की ये परम प्रिया हैं, और सखियां जितनी हैं राधा जी रूपी लता की पत्ते हैं ये सब, उनके कोई काव्य कोई प्रकाश है, चंद्रावली तक भी उनकी पत्ते हैं, उनकी काव्य हैं, ललिता विशाखा चित्रा सब उनकी काव्य हैं, कोई उनके प्रकाश हैं, कोई उनके प्रकाश का भी प्रकाश, कोई उनके अंश के अंश का अंश, कौन ये देवियां, कौन देवियां, ये वामन देव की पत्नी, हयग्रीव की पत्नी, ये सब जो पत्नियां हैं उनकी अंश और कला हैं, राधा जी की काव्यू कौन है ये सखियां बतलाया, और उनके अवतार का अवतार, अंश का अवतार द्वारका में महिषियां हैं, रुक्मिणी सत्यभामा प्रभु एक ही मूल, और उनकी छाया है क्या इस जगत में, महामाया दुर्गा काली विध्याचल वासिनी इत्यादि उनके सैकड़ों नाम, ये राधा जी के ही प्रकाश हैं। तो मैं राधा जी हमारी कृष्ण की बड़ी सबसे प्रिया हैं, और उनकी सबसे में मुझके मेरे ऊपर में दृष्टि रहती है, ये जमुना जी कौन है, विशाखा जी, विशाखा जी ने एक रूप धारण करके ये कालिंदी जमुना जी बनी है, और इन्हीं से वो जो द्वारका में जो कालिंदी जो कृष्ण की पटरानी है वो उनके अंश के अंश हैं, और जो समुद्र पथ गामिनी जो जमुना है बाह्य रूप से वो उनके अंशों के अंश के कला है। इस तरह से उन्होंने बतलाया, तो मैं उनकी कृपा से सब समय मैं देखती हूँ, उनकी अप...